दिन भर तारीख 22 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। गुजरात में विजय रूपाणी बने रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन हिमाचल में नए सीएम का नाम अब तक तय नहीं। प्रदेश बीजेपी में खींचतान जारी।
पार्टी अंतिम निर्णय करेगी, किसी व्यक्ति विशेष के हक में नारे लगाना अनुशासनहीनता है।
कैटलोनिया के पूर्व नेता पुजिमोंट की अपील, हालात सुधारने के लिए बातचीत करे स्पेन। और विवेचना में आज रेहान फजल नजर डाल रहे हैं महान फोटोग्राफर रघु राय की तस्वीरों की दुनिया पर।
और जो उसमें ट्रेजिक और सैड और टचिंग बात थी वो ये थी कि उस बच्चे की भोली भाले फेस पे आंखें खुली हुई थी, तो वो भोले से चेहरे की वो खुली आंखें जिनमें एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, कोई भी देखता था तो सोचता था हे भगवान ये क्या हुआ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में विजय रूपाणी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। विजय रूपाणी को पहली बार 7 अगस्त 2016 को आनंदीबेन पटेल के इस्तीफा देने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि अमेरिका के यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले के बाद फिलिस्तीनी अब अमेरिका की तरफ से आए किसी शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करने के बाद महमूद अब्बास ने कहा, मैंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन से एक बार फिर कहा कि अमेरिका के यरूशलेम को इसराइल की राजधानी मानने और यहां अमेरिकी दूतावास खोलने के फैसले के बाद शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वो एक ईमानदार मध्यस्थ नहीं रह गया है। हम अमेरिका की तरफ से दिए गए किसी शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये पक्षपातपूर्ण है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के साथ अपने देश के तनावपूर्ण संबंधों को स्वीकार किया है और कहा है कि वो चाहते हैं दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सुधार हो। बोरिस जॉनसन ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से मॉस्को में मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों के सामने एक जैसी ही समस्याएं हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया, सीरिया और व्यापार, लेकिन यूक्रेन और साइबर स्पेस में रूस की गतिविधियों के मामले में दोनों देशों की राय जुदा है। सर्गेई लवरोव ने बैठक से पहले ब्रिटेन पर आक्रामक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मैं ऐसी कोई गतिविधि याद नहीं कर पा रहा हूं जिससे ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध आक्रामक हो जाएं, लेकिन हम किसी भी बात के लिए ब्रिटेन को दोषी नहीं ठहरा सकते। इससे अलग हमारे सामने कई आरोप आए हैं जिनमें अपमानजनक बातें भी शामिल है, जैसे कि कहा जा रहा है कि हम सीरिया में एक आपराधिक सत्ता का समर्थन करते हैं और हम आक्रामक हैं, हम कब्जा करने वाले हैं और हम दूसरे प्रदेशों पर कब्जा करते हैं। ये सब इसके बावजूद है कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं और हर फैसले और उसके पीछे की वजहों के बारे में नियमित तौर पर बताते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव के शब्द। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर मुबाशर हसन को जीवित अवस्था में सड़क के किनारे पाया गया है। 6 सप्ताह पहले उन्हें अगवा कर लिया गया था। मुबाशर हसन पत्रकार रह चुके हैं और फिलहाल राजनीति शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मंगलवार को एक अन्य पत्रकार उत्पल दास को भी जीवित अवस्था में पाया गया था। उत्पल दास को 2 महीने पहले अगवा कर लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने इससे पहले बांग्लादेशी सरकार को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बांग्लादेश की सरकार इन आरोपों से इनकार करती आई है। युगांडा की सेना ने कांगो गणराज्य के पूर्व में मौजूद विद्रोहियों के शिविरों पर हमला किया है। सेना के प्रवक्ता रिचर्ड कैरामीर ने कहा कि कांगो गणराज्य से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया है कि युगांडा के सैनिकों ने कांगो गणराज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि हमले के लिए लड़ाकू विमानों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया है। हाल में कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हमले के लिए मूल रूप से युगांडा के विद्रोही समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जिम्मेदार माना गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
आज विधानसभा दल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ श्री विजय भाई रूपानी को नेता चुना गया और श्री नितिन भाई पटेल को उपनेता चुना गया।
ढोल नगाड़े और शहनाई की आवाज के बीच गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते वित्त मंत्री अरुण जेटली। दिन भर में आज हम सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की नई राजनीतिक तस्वीर की ही बात करेंगे। जैसा आपने सुना, अरुण जेटली बता रहे थे, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने विजय रूपाणी को अपना नेता चुना है, यानी वो एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल में नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए आज हिमाचल और गुजरात में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता भूमिका राय।
गुजरात की नई सरकार के मुखिया होंगे विजय रूपाणी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी तो अटकलें शुरू हो गई थीं कि पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा ला सकती है। लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में हुई विधायकों की बैठक में रूपाणी को कोई चुनौती नहीं मिली, उनके नाम पर सहमति बन गई। नई सरकार में नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं बीबीसी गुजराती के एडिटर अंकुर जैन?
गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई नए चेहरे के साथ जाएगी। कई नामों की चर्चा हो रही थी मीडिया रिपोर्ट्स में, बीजेपी नेताओं में, लेकिन आखिरकार आज जो बीजेपी ने डिसाइड किया कि विजय रूपाणी ही मुख्यमंत्री होंगे।
गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 182 में से 99 सीटें हासिल की थी। उसे एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन मिल गया है। गुजरात के उलट हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने आज जमकर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायकों की राय जानने के लिए शिमला पहुंचे थे। उनके सामने प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। धूमल चुनाव हार गए हैं लेकिन समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने नाराजगी जाहिर की।
पार्टी अंतिम निर्णय करेगी, किसी व्यक्ति विशेष के हक में नारे लगाना अनुशासनहीनता है।
हंगामे की वजह से केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने दिल्ली लौटने के पहले कोई बयान भी नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि अब मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली में तय होगा। इस मामले पर क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा का?
पर्यवेक्षकों की टीम कल आ गई थी शिमला में, वो आज वापस चली गई, लेकिन पर्यवेक्षकों की उस टीम ने यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी थी, ये पहले से ही स्पष्ट था और तय था। जो टीम आई थी पर्यवेक्षकों की, खाली वो फीडबैक लेने आई थी और फीडबैक लेके वो दिल्ली जाना था, ये पहले से ही था।
हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने 68 में से 44 सीटें हासिल की हैं। भूमिका राय, बीबीसी दिल्ली।
हिमाचल में धूमल चुनाव न हारते तो स्थिति दूसरी होती। बीजेपी ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हुए चुनाव लड़ा था। उधर गुजरात की राजनीति पर नजर रखने वालों की राय है कि अगर रूपाणी को हटाया जाता तो बीजेपी को ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता। उधर आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने बीते 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है। अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई बैठक के बाद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए।
बीजेपी का पूरा जो फाउंडेशन है वो झूठ का फाउंडेशन है। आपने 2G की बात करी, चाहे आप मोदी मॉडल को देखें, चाहे आप 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात देखें, चाहे आप किसान को सही दाम देने की बात देखें, एक के बाद एक झूठ। नोटबंदी झूठ, गब्बर सिंह टैक्स झूठ, सच्चाई क्या है?
कल 2G मामले में दिल्ली की एक कोर्ट का फैसला आने के बाद से कांग्रेस आक्रामक है। राहुल ने सवाल उठाए हैं, अब इंतजार बीजेपी के जवाब का है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार से। बिहार में बीते करीब 6 महीने से बाजार में बालू की कमी है। इससे निर्माण क्षेत्र का कामकाज ठप है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। इसे लेकर सियासी खींचतान भी जारी है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बख्तियारपुर कस्बे के सरवनराज रोज सुबह करीब 9 बजे लोकल ट्रेन पकड़कर पटना शहर काम की तलाश में आते हैं। वे बालू गिट्टी ढोने और घर बनाने के काम में मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन बीते करीब 6 महीनों से उनको और उनके जैसे हजारों मजदूरों को काफी कम काम मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि बिहार में निर्माण कार्यों के लिए बालू बहुत कम मात्रा में ही उपलब्ध है। श्रवण बताते हैं,
बालू गिट्टी गिरता था तो ठीका ठंडा कुछ भी कमाता था, लेवर ढलाई में कमाता था, पहले के खा रहा 6 महीना से कम 20-25 हजार पर चढ़ गया। पहले महीना में 20-25 दिन मिल ही जाता था, अब तो महीना में 10-8 दिन लगता है, वो भी जो काम 400-500 का है जो मिलता है 200 में।
इस साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के कारण जुलाई से सितम्बर तक बालू की खुदाई बंद रही। बिहार में इस दौरान जुलाई के अंत में सरकार भी बदल गई। नई सरकार ने बालू उत्खनन और बिक्री की नई नियमावली पेश की, जिसका सड़क से लेकर अदालत तक विरोध हुआ और नतीजा ये रहा कि बिहार के विकास की रीढ़ माने जाने वाला निर्माण क्षेत्र लगभग ठप पड़ गया। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था CREDAI बिहार के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कहते हैं,
2 साल पीछे चले जो हमको प्रोजेक्ट में आज के दिन में क्या है कि हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक फिक्स है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना है, टाइम लिमिट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। आप बताइए 6 महीना बालू नहीं मिला, अब हमको काम स्टार्ट करने के लिए फिर से मजदूर को लाना होगा और मान के चले कि 1,00,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान है टोटल।
बालू का कारोबार बंद होने से निर्माण क्षेत्र में काम लगभग बंद हो गया और इस कारण बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे दूसरे पेशेवरों पर भी बड़े पैमाने पर असर पड़ा। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुताबिक निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई क्योंकि जो बालू मिल भी रहा था वह पहले के मुकाबले करीब 3 गुना महंगा था। ऐसे में मामला सियासी भी हो गया। इस मुद्दे पर कल राजद ने बिहार बंद भी बुलाया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं,
राष्ट्रीय जनता दल ने गरीब का हितैषी होने के कारण, मजदूर हितैषी होने के कारण ये अपना फर्ज समझा और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमने इस मुद्दे को लेकर के राजद ने आंदोलन शुरू किया।
वहीं इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े दल जदयू का कहना है कि सरकार का मकसद राज्य हित में बालू सेक्टर के सिंडिकेट को तोड़ना था। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद बताते हैं,
राज्य सरकार को पर्यावरण और राजस्व मिले इसके उद्देश्य से राज्य सरकार ने बालू की नई नीति लाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नई बालू नीति को रद्द किया। तदुपरांत राज्य सरकार ने पुरानी नीति पर ही बालू बहाल करने का निर्णय लिया।
बिहार सरकार ने बुधवार को पुरानी नियमावली के तहत ही बालू की बिक्री करने की घोषणा कर दी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आगे सब ठीक भी रहा तो इस क्षेत्र को पटरी पर आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। मनीष चांडिल्य, BBC पटना।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। कैटलोनिया के निर्वासित नेता कार्लेस पुजिमोंट ने स्पेन से कहा है कि क्षेत्र की स्थिति बेहतर करने के लिए नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। कैटलोनिया में कल हुए चुनावों में अलगाववादी पार्टियों को बहुमत मिला है, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी सिटीजन्स पार्टी है जो स्पेन के साथ रहने की हिमायती है। अक्टूबर में कैटलोनिया के आज़ादी के ऐलान करने के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने स्थानीय संसद भंग कर दी थी। पुजिमोंट ने चुनावी नतीजों को स्पेन की हार बताते हुए कहा, चुनाव नतीजों से हमें वैधता हासिल हुई है, हम गणराज्य का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, अक्टूबर में हमें जनमत मिला था जिस पर अब दोबारा मोहर लगी है, इस बार चुनाव में हमने स्पेन की सरकार की ओर से तय नियमों का पालन किया। पुजिमोंट ने कहा कि वो स्पेन के बाहर यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश में बातचीत के लिए तैयार हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो नई सरकार से बातचीत करेंगे।
BBC इंडिया बोल।
गुजरात विधानसभा चुनाव में BJP की जीत और कांग्रेस की हार हुई, लेकिन जानकार मानते हैं BJP हारते हारते बची और कांग्रेस जीतते जीतते चूक गई। BJP और कांग्रेस के लिए क्या है इस नतीजे के मायने? BBC इंडिया बोल में अब की बार चर्चा होगी इसी विषय पर। आप भी रखें अपनी बात। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 23 दिसंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब विवेचना। अगर रघु राय को भारत का महानतम जीवित फोटोग्राफर कहा जाए तो अधिकतर लोगों को आपत्ति नहीं होगी। पिछले 50 सालों में रघु राय के कैमरे से ऐसी अद्भुत तस्वीरें खींची गई हैं जिनका पूरी दुनिया लोहा मानती है। हाल ही में उनकी बेटी अवनी राय ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, रघु राय एन अनफ्रेम्ड पोर्ट्रेट, जिसमें उनकी फोटोग्राफी करियर के महत्वपूर्ण पड़ावों को चित्रित किया गया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं रघु राय के कुछ चर्चित चित्रों पर।
ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, कैसा
लेकिन अगर हम ये कहें कि हकीकत से कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरत तस्वीर है, और तस्वीर भी ऐसी जिसके हर बिंदु, हर कोण, हर बिंब से एक अफसाना बयान होता हो, तो आप क्या कहेंगे? जिनकी खींची तस्वीरों का जिक्र हो रहा है वो और कोई नहीं, कैमरे के बेमिसाल बादशाह रघु राय हैं। राय उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने भारत की पिछले 50 साल की यात्रा को अपने कैमरे के लेंसों में कैद किया है। इस सफर की शुरुआत हुई थी 1965 में, जब उन्होंने पहली बार गधे के एक बच्चे की तस्वीर खींची थी।
मैं अपने बड़े भाई एस पॉल के पास आके ठहरा, जो फोटोग्राफर हैं, तो वहाँ उनके दोस्त भी जो आते थे, सब कैमरा वाले फोटोग्राफर्स, कैमरा की बात करते थे, लेंजेस की बात करते थे, फोटोग्राफ्स की बात करते थे। तो एक योग जॉय थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत सेंसिटिव, तो वो हरियाणा में उनकी ज़मीनें थी, तो वो पॉल भाई से मिलने आए और फिर वो जा रहे थे, तो वो एक दिन हमारे पास रहे, तो मुझे वो अच्छे लगे, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ आ जाऊँ घूमने के लिए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ चलो। तो जाते जाते मैंने अपने बड़े भाई से कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे भी एक कैमरा में फ़िल्म लोड कर दीजिए, मैं भी देखूँगा। तो उन्होंने एक फ़िल्म लोड कर दी, थोड़ा मुझे लाइट का समझा दिया, तो मैं उनके साथ चला गया। तो गाँव में वो गाँव के बच्चों की और विलेज लाइफ की तस्वीरें खींचते रहे, मैं खड़ा देखता रहा। तो शाम के टाइम में एक बेबी डोंकी खेतों के बाहर खड़ा था, बड़ा क्यूट सा लग रहा था, बुद्धू सा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही तस्वीर खींच ली। तो जब मैं वापस आया 2-3 दिन के बाद, तो भाई साहब ने वो तस्वीर प्रोसेस करा के देखा, तो कहने लगे भाई ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है। मैंने कहा अच्छा जी, 60s में 70s में द टाइम्स लंदन न्यूज़पेपर यूज़ टू पब्लिश हाफ पेज फोटोग्राफ, वीकेंड फोटोग्राफ, जिसमें कुछ आयरॉनिक हो, कुछ ह्यूमर हो, कुछ मस्ती हो, कुछ अनयूजुअल हो। तो उनको भेजी, जब गई तो उन्होंने तुरंत आधा पेज छाप दी मेरे नाम के साथ। तो पहली तस्वीर टाइम्स में छप जाए, वाज क्वाइट एन किक, यू नो, कि वाह वाह बात बनती नजर आती है।
रघु राय की एक तस्वीर बरबस आपका ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें इंदिरा गांधी अपने दफ्तर में बैठी हुई हैं और उनको गुजरात के विधायकों ने घेरा हुआ है। रघु राय ने ये तस्वीर इंदिरा गांधी के पीछे खड़े होकर उनके कंधे के ऊपर से ली थी।
जब वो घर से ऑफिस गईं, तो उनकी मीटिंग गुजरात के पॉलिटिशियंस एमएलए से थी, जो पूरी की पूरी कैबिनेट जैसे अंदर चली आई हो। अपेरेंटली वो अपना कोई मेमोरेंडम लाए थे जिसकी अप्रूवल चाहते हैं, पर उन सब के चेहरों पे जो एक्सप्रेशन एंग्जाइटी के और इंतज़ार के हैं, दिस शोज़ के इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल थी। एंड नोबडी स्पोक अ वर्ड टू इंदिरा जी कि भाई आप ये है, ऐसा है या हमारा वैसा है, या आप ये कर दीजिए, दे जस्ट वेटेड।
किसी ने शायद ये सही कहा था कि इंदिरा गांधी अपने मंत्रिमंडल में अकेली पुरुष थी। 1971 में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की खींची गई तस्वीरों ने रघु राय को विश्व के आला दर्जे के फोटोग्राफरों की कतार में ला खड़ा किया था। 1971 में वो भारतीय सेना के साथ साथ बांग्लादेश में घुसे थे, और जब जनरल जग्गी अरोड़ा जनरल नियाजी का सरेंडर लेने वहां पहुंचे थे, तो रघु राय ढाका हवाई अड्डे पर पहले से मौजूद थे।
फर्स्ट कॉलम जो अटैक करता है इंडियन आर्मी का, उसके साथ भी मैं गया अंदर बांग्लादेश के अंदर। आई वेंट देयर फॉर द सरेंडर ऑल्सो, वेयर आर जनरल्स एंड जनरल नियाजी, दे आर वॉकिंग टूगेदर टूवर्ड्स द place where they have to sign the surrender, and you could see General Niazi's head down with embarrassment and shame, and our generals looking up. So all those expression jo ki convey karte hain ki who's victorious and who's lost it.
Raghu Rai ke chitra Bharat ke vibhinn rangon ko ek aaine ki tarah dikhate hain. जिंदल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर शिव विश्वनाथन कहते हैं कि रघु राय की फोटोग्राफी पश्चिमी संकल्पना निगाह और जिसे जॉन बर्गर देखने का नाम देते हैं से अलग है। बकौल उनके, राय की फोटोग्राफी एक तरह का दर्शन है, दार्शनिक वाला दर्शन नहीं, बल्कि भगवान को देखने वाला दर्शन।
रघु राय कहते हैं कि रियलिटी इज नॉट आउटसाइड यू, वो कहते हैं कि आप जो जिस तरह से देखते हैं उस तरह चित्र बनता है। तो उनके कारण बोलते हैं कि दर्शन जो है एक तरह का रिस्पेक्ट है, एक तरह का भक्ति है। आप जब लुक करते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी है। जब ऑब्जर्वर देखता है वो लेंस से सिर्फ फैक्ट्स देखता है, रियलिटी देखता है, बट जो आदमी दर्शन से देखता है वो कुछ और चीज देखता है। वो देखता है कि दूसरे आदमी में किस तरह का सेक्रेडनेस है, किस तरह का भक्ति है, किस तरह का रियलाइजेशन है।
1977 में इंदिरा गांधी की हार को भी रघु राय ने सांकेतिक चित्र में कैद किया है, जिसमें कूड़ा उठाने वाला इंदिरा गांधी के फटे हुए पोस्टर को उठा रहा है और उसके सामने की दीवार पर परिवार नियोजन का नारा लिखा है, हम दो हमारे दो। रघु राय बताते हैं कि उनके संपादक कुलदीप नैयर ने उस चित्र को छापने से इनकार कर दिया था।
इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी 75-77 था, जो लोगों को निहायत ही नापसंद था, और उन्होंने कुलदीप नायर हमारे एडिटर थे उनको भी अरेस्ट करवाया बिकॉज ही यूज टू राइट अगेंस्ट इट। तो जब 77 की इलेक्शंस होने लगी, मी लाइक अ इंस्टिंक्टिव सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग आई वेंट फोटोग्राफिंग एवरी रैली। तो रैलीस पे मैं मुझे जो फील आया कि कांग्रेस जो है दम तो लगा रही है लेकिन पिटने वाली है, और जब जनता दल की रैली हुई इट वाज मैसिव एंड द रिस्पांस वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो जब इलेक्शंस हुए जिस दिन, उन दिनों तो एक ही दिन में पूरे देश में इलेक्शंस हो जाते थे, तो मैं ओल्ड दिल्ली में जामा मस्जिद के एरिया में इलेक्शन कवर करके वापस लौट रहा था। एक गरीब आदमी सारे पोस्टर्स इकट्ठे कर रहा था जिसमें इंदिरा गांधी का चेहरा बड़ा सा दिखाई देता है पोस्टर में, लेकिन जो इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक बात ये भी थी कि दीवार जो थी जिसके अगेंस्ट वो खड़ा था उस पे हम दो हमारे दो का जो फैमिली प्लानिंग के उसका हिस्सा दिखाई दे रहा था। आई थॉट माय गॉड व्हाट अ सिचुएशन, आई गॉट द सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग ट्रायंगल एंड द फैमिली एंड हम दो। वो हमने तस्वीर में बना के लेके आया, मैं शाम को कुलदीप नायर को दिखाई, कहता वेरी गुड पिक्चर, कमाल है, दिस एक्सप्रेसेस एवरीथिंग। ही सेज पर यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, कहने लगे कि नहीं नहीं अगर वो हारी नहीं ना तो तुम और हम दोनों जेल में होंगे। मैंने कहा नायर साहब प्लीज़ बिलीव यू मी दे आर लूजिंग इट। कहते रघु यार तुम इतना इमोशनल नहीं हो। मैंने कहा मैं इंस्टिंक्टिव आदमी हूँ एंड आई एम टेलिंग यू आर लूजिंग इट। ही सेज नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते। तो मैंने तस्वीर ली गुस्से से फाड़ के फेंक दी। मैंने कहा नहीं मैं ऑफिस ही नहीं आऊँगा। तो दूसरे दिन 4:30-5 बजे कुलदीप नायर साहब रघु राय को ढूंढ रहे हैं। तो जब पता चला कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो फिर उन्होंने घर पे मुझे फ़ोन किया कि यार कहाँ हो तुम, कांग्रेस हार रही है वो तस्वीर यूज़ करनी। मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आज नहीं यूज़ करोगे कल नहीं मैं आऊँगा। देन ही सेड आई एम वेरी सॉरी, फिर आ जाओ तुम, अब बड़ी छापेंगे। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ फोटो एडिटोरियल विच कमेंटेड द डिफीट।
रघु राय को ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान की तस्वीरें खींचने का भी मौका मिला था। वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को नज़दीक से जानने लगे थे और उन्हें पाजी कहकर पुकारते थे, लेकिन इसकी वजह से वो एक बार बहुत मुश्किल में पड़ गए थे।
इन एज ही वाज यंगर टू मी, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम भिंडरावाले जी आई थॉट आई बिकॉज ही इज अ सरदार एंड आई एम अ पंजाबी सो आई यूज टू कॉल हिम पाजी। वन नाइट उनके जो खास दो आदमी थे भिंडरावाले के, वेरी यंग आई मीन वेरी हैंडसम सरदार्स who used to wield guns, तो वो आए, नॉक किया दरवाजे पे, मैं खोला, मैंने कहा जी बताइए आप कैसे आए। कहते नहीं हम आपसे बात करने आए। मैंने कहा बताइए। कहते हैं देखिए आप फोटोग्राफ करते हैं, आप जो भी करते हैं उनके आसपास घूमते हैं वो तो ठीक है, पर वो आपके पाजी नहीं है, वो आपके भाई नहीं है, हैं, वो संत बिंडन वाले हैं। मैंने कहा बात सुनिए, मेरी उम्र उनसे बड़ी है और उनके साथ मेरी एक रिलेशनशिप कायम हुई है, अगर मैं उनको पाजी कहता हूँ और उनको बुरा नहीं लगता आपको क्यों बुरा लगता है। कहते नहीं वो हमारे संत हैं और आप दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे।
और ऑपरेशन ब्लू स्टार से एक दिन पहले आप उनसे मिले थे?
क्योंकि मेरी भिंडन वाले से पुरानी रिलेशनशिप थी पिछले 1.5-2 साल की, और पाजी यू नो आई न्यू माई नेम एवरीथिंग। सो मैंने मैसेज भेजा कि मैं आया हुआ हूँ और मैं तो आपको मिलना है ज़रूरी। तो वो अकाल तख्त में सेकंड फ्लोर पे थे छुपे हुए। बड़ी मुश्किल से मुझे वो इनके सपोर्टर ले गए ऊपर, तो उनकी आंखें जो थीं गुस्से और फियर से भरी हुई थी बिकॉज तब उन तक उनको इस बात की समझ आ गई थी कि अब जो है मामला काफ़ी सीरियस होने लग गया है, अगर आर्मी ने घेर लिया है तो अब वो छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे कहते तू क्यों आया थे, मैं क्या, अरे पाजी आई हैव बीन फोटोग्राफिंग यू फॉर एवरीथिंग, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त। कहते मैं देखांगा, मैं वो कर दांगा, मैं देखांगा किस दी हिम्मत है जड़ा हाथ लांदा है, जड़ा अंदर आंदा है। एंड आई कुड सी द फियर एंड हिज आईज वर ऑलमोस्ट रेड यू नो विद फियर एंड एंगर।
रघुराय ने ताजमहल की जितनी कोड़ों से तस्वीरें ली हैं उतनी कम लोगों ने ली हैं। एक बार उन्होंने वायुसेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन का हैच खुलवाकर ऊपर से ताज की तस्वीरें ली थी। उस समय रघु राय को पीछे से दो लोगों ने पकड़ा हुआ था कि कहीं वो तस्वीर खींचते समय हवा में ना उड़ जाए।
उन दिनों लद्दाख में आर्मी ऑपरेशंस की प्रैक्टिस हो रही थी, तो एयर चीफ मुलगांवकर जो थे वॉज अ वंडरफुल यू नो वेरी फ्रेंडली पर्सन, सो ही इन्वाइटेड सम ऑफ अस फ्रॉम द प्रेस। So he just asked me, he says, क्या कर रहे हो रघुराय तुम आजकल? मैंने कहा oh, I am doing a big book on Taj Mahal. Suddenly it occurred to me, मैंने कहा यार ये तो एयर चीफ है। तो मैंने कहा चीफ आई हैव टेकन पिक्चर्स ऑफ ताज महल इन विंटर इन समर इन मानसून एवरीवेयर फ्रॉम इन साइड फ्रॉम आउट साइड ओनली वन एंगल इज मिसिंग। So he suddenly smiled. He says, "I know which one." He told his defense PR man, "Ke inka tie-up kara do Agra le jaake aur inko let him fly over Taj Mahal." So I took that picture, Taj Mahal and the Jamuna River in the background. So that was very important picture. I did a big book on Taj Mahal.
Jab aanchal raat ka lehraaye aur sara
लेकिन जिस तस्वीर ने रघु राय को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दी वो थी भोपाल गैस कांड के बाद एक दो साल के बच्चे को दफनाए जाने की बार बार याद आने वाली तस्वीर।
पहले तो हमने फोटोग्राफ किया ऑल दोज डेड्स हु वर बीइंग ब्रॉट टू हमीदिया हॉस्पिटल, जो बहुत बुरी हालत में थे उनको वहाँ लाया जा रहा था, बच्चे भी थे औरतें भी थी, रास्ते में एनिमल्स मरे पड़े हैं, उनकी बॉडीज ब्लोटेड हैं। फिर वहाँ से हम क्रीमेशन ग्राउंड में गए जहाँ मुस्लिम्स अपने डेड्स को दफना रहे थे और जहाँ हिंदू अपने डेड्स को जला रहे थे। तो जब हम वहाँ मुस्लिम्स की सिमेट्री में गए तो वहाँ पे एक एक गहरी कब्र खोदते थे और उसमें दो दो तीन तीन लोगों को डाल देते थे एक दूसरे के ऊपर और बंद कर देते थे। तो ये बच्चा जो था शायद तीसरी बॉडी थी जो उसको बैरी करने वाले थे। अभी आधी मिट्टी डाली थी, उसका फेस दिखाई दे रहा था। और जो उसमें ट्रेजिक और सैड और टचिंग बात थी वो ये थी कि उस बच्चे की भोली भाले फेस पे आंखें खुली हुई थी। तो वो भोले से चेहरे की वो खुली आंखें जिनमें एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है, कोई भी देखता था तो सोचता था हे भगवान ये क्या हुआ।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और इंदौर के मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मैच की तस्वीर हम आपको बयां कर देते हैं। कप्तान रोहित शर्मा के शानदार शतक के दम पर भारत ने बिना नुकसान 149 रन बना लिए हैं। 12 ओवर खत्म हो चुके हैं। रोहित शर्मा ने 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इस तेज तर्रार पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के जमाए। वो अभी 102 रन बनाकर 39 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं और भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहे हैं। इस मैच का ज़्यादा अपडेट आप bbchindi.com पर हासिल कर सकते हैं। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया और उरूज बानो। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र और गुरप्रीत कौर ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।